सांसारिक राग है उसमें भी हम जुड़ते हैं, उसमें हम शरीर से जुड़ते हैं और शरीर के संबंधों से जुड़ते हैं। हम अपनी उस प्रक्रिया को सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तित कर रहे हैं कि अभी तक हमने संसार में जो जुड़ना सीखा है वो अपने और दूसरे के शरीर से जुड़ना सीखा है या शरीर के जो संबंध हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये बहन है, इस तरह से हमें जुड़ने की आदत है। और उससे भी हमारे जीवन में अगर हम चाहें तो एक ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा लगाव या कि जो जुड़ाव है वो हमारे जीवन को कब ऊंचा उठा पाता है, वरना वही लगाव वही जुड़ाव हमारे जीवन को पतित भी करता है। यदि हम अपने उस जुड़ने से अपनी कषायों को मंद कर लेते हैं तो वो हमारा जुड़ना भी हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है। और जिस जुड़ाव या जिस लगाव में हम अपनी कषायों को और बढ़ा लेते हैं, अपनी आसक्ति को और बढ़ा लेते हैं, वो जुड़ाव या कि वो लगाव हमारे जीवन को पतित भी करता है। भगवान के गुणों से जुड़ना, भगवान से जुड़ना और अपने आप से जुड़ना, ये हमारी अपनी कषायों को मंद करने में और हमारी आसक्ति को, हमारे अज्ञान को कम करने में सब में सहायक है। इसलिए हम इस भक्ति के स्वरूप को समझ रहे हैं, कि कैसे हम जुड़ें, कैसे हम भगवान से अपने आप को जोड़ें। किसी का हमारे साथ होना और हमारा किसी का किसी के साथ होना, दोनों में एम्फेसिस में बहुत डिफरेंस है। हम किसी के साथ होते हैं तब जिम्मेदारी हमारी है, कोई हमारे साथ है तो जिम्मेदारी उसकी है। ये दोनों चीजें समझने की है। भगवान तो हमारे साथ हमेशा से हैं, उनकी प्रेजेंस तो हर समय हर जगह है। वे अपने केवल ज्ञान में तीनों लोकों को स्पष्ट देख रहे हैं, उनके उनके ज्ञान में सारे लोक की चीजें झलक रही हैं। भगवान का हमसे जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा भगवान से जुड़ना महत्वपूर्ण है। एक इसके लिए घटना आती है, तो वो है तो ऐसे ही अपने संसार में जैसे अपन करते हैं वैसा ही है। पिताजी के साथ बेटे जी बैठ करके भोजन करा करते थे एक ही थाली में। तो एक दिन बेटे जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम जो है आपके साथ भोजन नहीं करेंगे, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। अब दूसरे दिन देखा तो बेटे जी अपनी थाली अलग रखे बैठे हैं, तो पिताजी धीरे से खिसक करके उनकी थाली में खाने लगे। तो बेटे जी ने कहा कि देखिएगा कल मेरी आपसे क्या बात हुई थी, मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक, तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ खाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, इसके लिए तो तुमने मना नहीं किया। ये क्या चीज है? ये हम अपने आप जुड़ रहे हैं। भगवान किसी को भी नहीं कहते कि तुम हमारे प्रति श्रद्धा रखो, हमारी भक्ति करो, हमारे गुणों से अनुराग करो, लेकिन हम ही अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना गुणानुराग भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं। ये वन साइड रिलेशन है, ये हमें ही बनाना है, हमें ही इसे मैनेज और मेंटेन करना है। एक तरफा रिश्ता है ये, श्रद्धा का रिश्ता, भक्ति का रिश्ता। इसमें अगले वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम ये सोचें कि भगवान कभी हम चूक जाएंगे तो हमें याद दिला देंगे, या भगवान से हम जुड़े हैं तो हमारा लाभ होगा, ये सारी चीजें हमें एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि क्या एक तरफा रिश्ते में ये चीजें संभव हैं। तब फिर हम क्यों भक्ति के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं कि जब मुझे ही अपनी तरफ से सारा कुछ करना है, तब तो अपन लोग जब लौटने लगते हैं तो क्या बोलते, इति आशीर्वाद, हमने ही अपने हाथ से आशीर्वाद भी ले लिया, वहां कौन है देने वाला। पूजा पूरी होने के बाद अपन बोल लेते ना कि इति आशीर्वाद, पूरी पूजा हो गई, अब किससे कहें कि आशीर्वाद दे दो, हम ही ने पूजा की, हम ही ने पूजा से अपने परिणाम निर्मल किए, हम ही पूजा से परिणाम निर्मल करके फल पाएंगे। ना वहां कोई फल देने वाला है, ना हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें फल दे। इतनी स्वास्थ्रित प्रक्रिया है, लेकिन बस ये ध्यान रखने की चीज है कि हम गुणों से जुड़े हैं, गुणवान से जुड़े हैं, ये तो ठीक है, लेकिन दो नाव में पैर नहीं रखना, एक ही तरफ जुड़ना होता है। संगति हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, ये तो सबने पढ़ा है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि किसकी संगति करते हैं और किसकी संगति से बचते हैं, महत्वपूर्ण ये भी है। किसकी संगति करते हैं इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी संगति से हम बचते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। किससे जुड़े हैं इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, किससे नहीं जुड़ना चाहिए यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण। अब इस चीज को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भगवान से हम जुड़े हैं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन वो जुड़ाव हमें दूसरी चीजों से डिटैच करता है या नहीं करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसार भी उतना ही चाहते हैं और भगवान को भी उतना ही चाहते हो? तब तो फिर बात बनेगी नहीं, फिर तो हम भगवान को भी इसी शर्त पर चाहेंगे कि मेरा संसार ठीक से चलता रहे। यही तो अपन कर रहे हैं भक्ति से कि मेरा संसार भी ठीक चलता रहे और आपके चरणों में आ जाया करूंगा, मैं आपकी पूजा कर लिया करूंगा। लेकिन भगवान आप मेरे साथ बन नहीं आना, मैं आपके पास आ जाया करूंगा रोज और आपकी पूजा करूंगा और आप यहीं पर छूट जाना और मैं चले जाऊंगा। आप मेरे साथ आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपन तो कई बार ताला लगवा देते हैं कि आना जाए भगवान हमारे साथ, बंद रहते हैं वो वहां पर, हम ही आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे साथ साथ फिरोगे तो बहुत धूप है बाहर, ऐसा नहीं है कि धूप है बाहर, मुश्किल ये है कि फिर मैं गड़बड़ नहीं कर पाऊंगा आपको, अगर साथ साथ में फील करूंगा तो चोरी करने लगूंगा तो आप धीरे से कहोगे कि कर क्या रहे हो, तो आप वहीं बैठो, हम तो आपकी पूजा पाठ भर करेंगे, आपके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखेंगे। लेकिन वादिराज महाराज ऐसा नहीं कह रहे, वादिराज महाराज तो कह रहे कि जिससे जुड़े हैं उसका विस्मरण ना हो पावे तब तो जुड़ना कहलाएगा। अपन कहते कि हमें तो आपकी बहुत याद आई, अच्छा याद आई, इसका मतलब कि भूल गए होंगे। जिसको हम भूलते ही नहीं है उसको अलग से याद करने की क्या जरूरत है, जिसका विस्मरण ही नहीं हुआ है, जो 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे मन वाणी और शरीर जिसका हमेशा स्पर्श कर रहे हैं, वास्तव में भक्ति तो वही है। फिर हमारे मन वाणी और शरीर भगवान की भक्ति में 24 घंटे लीन है, अपने सांसारिक कार्यों के करते हुए भी हम भूल नहीं पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो महीने दो महीने का है, उससे कहो कि माँ की याद आती है, वो कहता भूलते ही नहीं हूं, याद क्या आती, भूलूं तब ना याद आए अलग से, वो तो दूध भी पी रहा है, वो तो सो भी रहा है, तब भी वो तो पूरा उसी के स्मरण में ही है। क्या ऐसा ही हमारे अंदर भक्ति की ऊंचाई आ सकती है? प्रयत्न करना पड़ेगा, अभी तो अपनी भक्ति मंदिर तक सीमित है, अपन को भगवान की प्रेजेंस फील ही नहीं होती हर जगह। वैसी प्रेजेंस फील होने लगे भगवान की तब वो जुड़ाव कहलाएगा, तब वो सच्ची भक्ति कहलाएगी। फिर मैं जहां पर भी चूकना चाहूंगा तो वहां चूक नहीं पाऊंगा। क्या हुआ, मैं आपसे कह रहा था कि जहां हम जुड़ जाते हैं ये तो ठीक है, लेकिन किस चीज से हमें दूर रहना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज भी समझने की है, हमें किससे दूरी रखनी चाहिए। जैसे अपन कहते कि देखो भैया तुम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो तो जरा ऐसे खराब लोगों से दूर रहा करें, नहीं तो क्या इंप्रेशन बनेगा। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि आप भले ही दूध पी रहे हो लेकिन शराब की दुकान पर बैठ के पियोगे तब तो फिर क्या माना जाए। आप भले किसी को समझाओ कि मैं तो दूध पी रहा था, पी रहे होंगे आप, बिल्कुल सच है, लेकिन आप बैठे कहां पर, ये भी देखना पड़ेगा कि हमें किसकी संगति से बचना है, किसकी संगति करनी है। ये तो ठीक है भगवान की भक्ति करनी ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं अपने शरीर की भक्ति और संसार की भक्ति और संसार से जुड़ाव में भी इंटरेस्ट ले रहा हूं। ये बड़ा विचार नहीं। एक चील के अंडे उसकी मां ने मुर्गी के अंडों के साथ रख दिए ताकि बच जाए। ऐसा पक्षी लोग आपस में करते हैं। कोयल अपने अंडे जिसमें से बच्चे निकलेंगे वो कौवे के घोंसले में रखती है, नहीं तो कौवे तो सब उनको नष्ट कर देंगे। तो कौवे को ये लगता है कि ये मेरे ही बेटे हैं, तो वो सेफ करता हूं। ठीक इसी तरह से जो है मुर्गी के अंडों के साथ में चील ने अपने अंडे रख दिए ताकि सेफ हो जाए। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि जब उसमें से चील का बच्चा निकला तो वो मुर्गी के बच्चों के साथ में ही खेलने कूदने लगा और उसी के साथ में पल पोस करके बड़ा होने लगा। वो आकाश में भी उड़ सकता है इसका उसे कभी भान ही नहीं था। वो तो जैसे मुर्गी के बच्चे थोड़ा ऊंचे उठते और फिर बैठ जाते वैसा ही करता। एक बार जो है एक चील को उसने उड़ते देखा, वो तो बहुत ऊंचे आकाश में उड़ती है। उसने अपनी मां से पूछा उस मुर्गी से कि ये कौन सा जीव है, ये मेरे जैसे ही लगता, जैसा मैं हूं ऐसे ही ये लगता हूं, ये इतने ऊपर यहां उड़ रहा। तो उस मुर्गी ने क्या समझा कि वो चील है, तुम भूल जाओ, उसके जैसे लगते जरूर हो लेकिन तुम हो मुर्गी। अब क्या हुआ, जिंदगी भर उसने वैसा ही जीवन जिया। मैं ये घटना पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हम सबके साथ भी यही है। हम अपने शरीर की सोबत में, अपने इंद्रिय और मन की सोबत में, इनकी संगति में अपना स्वभाव भूल गए हैं। इससे रहित हमारी अवस्था है उसको हम भूले हुए हैं। हमारी जो आकाश की उड़ान है वो तो हम भूल ही गए हैं। हम तो अपनी मलिनताओं को ही उन्हीं की संगति में रह करके उन्हें अपना मान बैठे हैं, जबकि निर्मलता मेरा अपना स्वभाव है, उसकी मुझे संगति करनी चाहिए थी, उससे मुझे जुड़ना चाहिए था। जहां जहां मेरे अंदर पवित्रता है, जो जो मेरी स्वाभाविक स्थिति है उससे मैं जुड़ूं, मेरी राग द्वेष की जो मलिनताएं हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है, उनसे क्यों मैं जुड़ता हूं। मैं अपने शरीर इंद्रिय इन सब से तो उतना ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, इनसे इतना एकमेक हो गया हूं कि इनके जन्म मरण में अपना जन्म मरण मानता हूं, इसको पहुंचने वाले सुख दुख को अपना ही मान करके जीता हूं। ये मेरा अपना भ्रम, ये भी टूटना चाहिए। भक्ति यही करती है। भक्ति हमें इस बात से परिचित कराती है कि तुम जिस शरीर में रह रहे हो वो शरीर को अपना भले ही मान रहे हो, पर तुम शरीर नहीं हो, उससे रहित हो। इसकी संगति में आकर के तुम अपनी वास्तविकता भूल नहीं जाना, रहो इसमें, कोई हर्जा नहीं, लेकिन एक संतुलन बना करके रहे। भक्ति हमें ये भी सिखाती है। भक्ति हमें शरीर में कैसे रहना, उससे हम जुड़े हुए हैं तो वो जुड़ाव हमारा कैसा हो। जब हम गुण और गुणवान से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तब अपने वास्तविकता से जुड़ते हैं, तब हमारी जो कमजोरियां हैं उन पर हमारा ध्यान जाने लगता है। क्या कहते बादीराज महाराज, पादन न्यासा दपि च पुनतो यात्रया तेत्र लोकीं, हेमा भासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मा, सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वयि अशेषम मनो मे, शेयं किं तत् स्वयं हर हर यन्न मामभ्युपैति। भगवान, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मैंने तो जो जो सुना है सो वही आपके गुणगान में, आपकी भक्ति में मैं आपसे निवेदित कर रहा हूं। मैंने सुना है कि पादन न्यासा दपि चपुन तो यात्रया तेतरलू की, तीनों लोकों में जब आप विहार करते हैं तो जहां जहां आप चरण रखते हैं हेमा भासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्मा, तो कमल जो है वो खिलते चले जाते हैं और इतने ही नहीं वे सोने की आभा और अत्यंत सुगंध से युक्त हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना। देखिएगा किस तरह से हम भगवान से जुड़ गए हैं और उनके बारे में क्या क्या विचार कर रहे हैं कि हे भगवान आप तीनों लोकों में जब गमन करते हैं विहार करते हैं आपके चरण जहां पड़ते हैं तो वे चरण उनके नीचे नीचे कमल खिलते चले जाते हैं देवों के द्वारा और वे कमल सोने की आभा वाले हो जाते हैं और अत्यंत सुगंध से युक्त हो जाते हैं जबकि आप उन कमल के ऊपर पैर भी नहीं रखते उससे चार अंगुल ऊपर रहते हैं। और अब सर्वांगे निष्प्रशति भगवान स्त्वयि अशेषम मनो में, मेरा मन आपको सर्वांग रूप से स्पर्श कर रहा है अर्थात आप मेरे मन में ऐसे समा गए हो कि निकलते ही नहीं, मेरी मन वाणी और शरीर आपसे इतने एकमेक हो गए हैं इतने जुड़ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ही बताओ भगवान कि कौन सी ऐसी चीज है संसार में जो मेरे लिए प्राप्त ना हो, हर हर दिन रात मैं जैसा चाहूं वैसा मुझे प्राप्त हो सकता है क्योंकि आपके बिना स्पर्श किए जब कमल सोने की आभा वाले और सुगंध से युक्त हो सकते हैं तब आप तो मेरे पूरे देह को मेरे मन को मेरी वाणी को मेरे पूरे जीवन को आपने स्पर्श कर रखा है, या कि ऐसा कहें कि आप मेरे हृदय में विराजे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब आप मुझे पूरी तरह स्पर्श कर रहे हैं बिना कमल को स्पर्श किए उनको इतना सौभाग्य मिलता है तो मुझे आप अगर स्पर्श कर रहे हैं तो मुझे क्या ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा संभव हो जाए। ये जुड़ाव की प्रक्रिया, क्या हम इस तरह से भक्ति के दौरान भगवान से एक मेक होकर के जुड़ पाते हैं? अगर सचमुच हम ऐसी भक्ति क्षण भर को भी करें, अपने मन वाणी और शरीर को भूल जाएं और भगवान में ही एकाकार हो जाएं, तो ऐसा कौन सा हमारे जीवन में उपकार है जो कि ना हो सके। वादीराज महाराज कह रहे हैं कि सेठ जी का उपकार यदि मेरे से हो जाएगा तो उसमें मेरा कुछ नहीं है, भगवान असल में आप मेरे पूरे जीवन को स्पर्श कर रहे हैं, यह कि मेरा मन वाणी और शरीर आपके चरणों में चूंकि मैंने समर्पित कर दिया है इसलिए अब मेरे द्वारा अगर कुछ होता है तो वो मेरे द्वारा नहीं हुआ, वो तो आपके ही माध्यम से हुआ, यही कहना पड़े। देखिएगा किस तरह से और हम इस भक्ति से अपने मन वाणी और शरीर सबको संतुलित कर सकते हैं। संतुलन के मायने यही है कि मैं मन वाणी और शरीर को भगवान की भक्ति में लगाऊं और जब वहां से निवृत्त हूं तो फिर ध्यान रखूं कि मेरी मन वाणी और शरीर अपवित्र ना हो जाए मलिन ना हो जाए क्योंकि मैंने तो इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। जो चीज भगवान के चरणों में चढ़ा दी जाती है वो तो बहुत पवित्र ही मानी जाए। मैंने अपने मन वाणी और शरीर को सबको भगवान के चरणों में चढ़ा दिया है, भगवान मेरे मन वाणी और शरीर का स्पर्श कर रहे हैं, अब मैं इसे कलुषित नहीं होने दूंगा, ये शरीर मेरा अपवित्र ना हो सके, मेरी वाणी से मैं ऐसा ना बोलूं जिससे वो अपवित्र हो जाए, मेरे मन में मैं ऐसा खोटा विचार ना करूं जिससे कि मन मलिन हो जाए क्योंकि फिर मैं भगवान का स्पर्श कैसे कर पाऊंगा, मैं उस लायक मेरे मन वाणी रह ही नहीं जाएंगे। इस तरह यदि हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित बनता है। ये दूसरी चीज है संतुलन के थोड़ा सा और समझ में आ जाए इसलिए एक उदाहरण लेते हैं। आचार्य महाराज जैसा हम लोगों को समझाते हैं, आज थोड़ा सा बाहरी वातावरण का असर तो है, पर फिर भी कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा बनाए रखें। थोड़ी और 5-10 मिनट अपन बैठते हैं, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, एक्चुअली कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक संतुलन जो है वो हमारे जीवन में आता है भक्ति से। कैसे आता है? क्योंकि हमने अपने मन वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में लगा रखा है। हम ऐसा मान चुके हैं कि हमारे मन वाणी और शरीर का स्पर्श भगवान कर रहे हैं, तब फिर मुझे अपने मन वाणी और शरीर को संतुलित बनाना चाहिए। मुझे सांसारिक क्रियाएं करनी भी हैं, लेकिन इस तरह से, इस प्रकार से मुझे करना है कि वे अपवित्र ना हो, उनकी पवित्रता बनी रहे, किसी भी तरह से मेरे द्वारा कोई अति ना हो। अति नहीं होना ही संतुलन है। अति के मायने क्या? कि कभी ऐसा ना हो कि मैं शरीर की सेवा में ऐसा लग जाऊं कि मैं भगवान को भूल जाऊं, कभी ऐसा ना हो कि मन में मैं विचारों में खो जाऊं और भगवान का स्मरण ही ना कर पाऊं, कभी मैं अपने बोलने में इतना मशगूल हो जाऊं कि भगवान की भक्ति ही भूल जाऊं। आज तो मैंने अपने मुंह से भगवान की भक्ति नहीं की, आज तो मैंने अपने माथे को भगवान के चरणों में नहीं झुकाया, मैं इतना व्यस्त रहा, या कि मैंने भगवान के गुणों का आज तो स्मरण ही नहीं किया। ऐसा ना हो जाए मेरे से, क्योंकि मैंने अपने मन वाणी और शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो अब दिन भर में एक बार तो मेरा माथा उनके चरणों में झुकेगा, दो शब्द तो मेरे उनकी भक्ति में निकलेंगे, मेरे मन में उनके गुणों के प्रति क्षण भर को अनुराग तो जागे गई। होना तो ये चाहिए कि 24 घंटे ऐसा हो सके कि वाणी से जब भी निकले वचन तो भगवान की भक्ति के निकले, शरीर हमेशा उनके चरणों में झुका रहे। और पर ये एकदम पॉसिबल तो नहीं है और ठीक भी नहीं है। माता भगवान के चरणों में रखे रहोगे तो कब तक? भोजन भी तो करना पड़ेगा, घर गृहस्थी के काम भी तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि माता वहीं रखे रहो। आशय क्या है? आशय ये है कि इन सबका मैं सदुपयोग करते रहूं और भगवान का विस्मरण न हो जाए मुझे इन तीनों के द्वारा। ये संतुलन, अति ना हो। आचार्य महाराज, 2 घटनाएं छोटी छोटी सी मुझे याद आती हैं, उनके जीवन में संस्मरण है ये मेरे जीवन के। एक बार क्या हुआ, मैं उस समय छुल्लक था, तो वैसे हम लोगों को आज्ञा थी, आदेश था कि अपने कपड़े अपने हाथ से धोना, चुल्लक जी का काम, तिलक जी अपना अपने हाथ से धोएंगे। अब की बात अलग है कि अब तो बहुत श्रद्धालु आ गए हैं, है ना, तो श्रद्धालु लोग ले जाते हैं चुल्लक जी के कपड़े, तो टिनोपाल में डल करके आते हैं फिर बढ़िया से, है ना। अब उसमें कितनी जीव राशि की हिंसा होगी, श्रावक थोड़ी ध्यान रख पाता है। वो कहता है महाराज आपको इससे क्या मतलब, हिंसा तो हमसे हो रही तो पाप हमें लगेगा, आपको इससे क्या लेना है। ऐसा उसके पास लॉजिक भी है, अपने पास बुद्धि है तो बुद्धि का ऐसा अपन उपयोग कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन करना नहीं चाहिए। इसके लिए नहीं मिली बुद्धि ऐसे तर्क के लिए। सच्ची तो ये है कि हम सावधानी पूर्वक अपना आचरण करें। तो क्या हुआ कि हमें ध्यान नहीं रहा और भूल गए हम कपड़े धोना, तो एक श्रावक थे वो जल्दी से कि अब छुल्लक जी के कपड़े जल्दी धो के लाओ, 9:30 बजने वाले हैं शुद्धि के लिए। वो जल्दी से गए और उन्होंने जो है वो अपने मशीन में डाल करके और बढ़िया से सुखा करके, मशीन में सूख भी जाते हैं, ऐसे वाली मशीन चलती है आजकल, उसी में धुल गए, उसी में सूख करके और बाहर निकले। और थोड़े थोड़े से मान लो सीते भी थे, गीले थे, तो उनने फट से फैलाए बाहर, और टिनोपाल भी डाल दिया था तो एकदम झगमग झगमग थे वो, तो दुपट्टा भी और लंगोट भी। अब अपन ने ध्यान नहीं दिया, पहने और चल दिया। आहार के लिए आहार से आके आचार्य श्री को नमोस्तु करना रहता था। जैसे ही नमोस्तु किया तो आचार्य श्री बोले, क्या बात है चुटलक जी, बहुत कपड़े चमक रहे हैं आज। वो तो कुछ नहीं, इतने ही बोलते हैं। चुटलक जी बोलेंगे अच्छे से, चुटलक जी कपड़े बहुत सबके सामने। अब सिर उठाओ तो उठता नहीं ऊपर, नीचे किए कि गलती तो हो गई महाराज, दो गलतियां एक साथ हुई। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने हाथ से नहीं धोए, और दूसरी ये कि जिसने धोए उसको भी मैं डायरेक्शन नहीं दे पाया कि आप कृपा करके सिर्फ धो करके ले आना, इनको और चमकाने की आवश्यकता नहीं है। कपड़े तो पहनना जरूरी है, उनका साफ सुथरा स्वच्छ होना जरूरी है, लेकिन उनका बहुत अधिक तड़क भड़क वाला होना जरूरी नहीं है। शरीर को संभालना, उसको स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको आराम तलवी सिखा देना, ये तो भगवान की भक्ति से विमुख होने का कारण। बस इतने ही समझने की चीज, इतने ही संतुलन बना रहे कि ये इतनी बेईमानी ना करने लगे कि कल के दिन कहे कि मेरे से नहीं होता खड़े होके पूजा करना, मेरे से नहीं होता मंदिर तक जाना, ये ना कहने। ऐसे ही मन और ऐसे ही वाणी सबके साथ यही संतुलन यदि बना रहे। मन के संतुलन का उदाहरण देखें, पर छोटा सा एक घटना वो रह गई, आधी बताई मैंने, वो भूल गई, उसको पूरी कर लेते हैं फिर बात दूसरी बने हैं, दो तीन मिनट और बाकी है मेरे पास अभी। फिर दूसरी उसी के साथ जुड़ी हुई, एक बार पैसे चमक रहे हैं बहुत कपड़े, फिर बिहार कर रहे थे तो एक दूसरे छुट लग गई थे। अब वो क्या हुआ, उन्होंने क्योंकि सुन लिया था कि ज्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए, तो वो तो साबुन सोडा ही नहीं लगाते थे, वो गंदे होने लगे कपड़े बिल्कुल ऐसे। अब आचार्य श्री के सामने तो शुद्धि का मौका पड़ता नहीं था, दूर से करते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि वो छत उतई सी थी विहार में, सो वहीं एक कोने में आचार्य श्री शुद्धि कर रहे थे, वहीं चुटलक जी ने कि जैसे उनने कपड़े पहने तो आचार्य श्री ने चुपचाप देख लिया, और फिर बाद में क्या बोले, पता नहीं कैसे कौन कौन से तेली परिवार के लोग भी हमारे संघ में आ गए। इनडायरेक्ट बोलते हूं, तेली मतलब अब तेल में बिल्कुल लिप्त है उनके कपड़े, मतलब अपने कपड़ों का ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं। एक तरफ क्या कहा था कि ज्यादा चमकदार नहीं बनाना, दूसरी तरफ कहा कि ऐसा भी नहीं कि वे फिर हमारे काम के ही ना रह जाएं, शरीर को ऐसा भी नहीं खींचना जिससे कि फिर उससे भक्ति ही ना हो पावे। दोनों ही चीज है, आराम तलवी भी नहीं सिखाना और इसको नष्ट भी होने नहीं देना, इससे भक्ति तभी हो पाए। ये संतुलन और मन के संतुलन की आपसे बात कहूं कि कभी मन में हमारे कृतज्ञता का भाव दूर ना हट जाए हमसे, हम पर जिनकी कृपा है, बड़े लोगों की, पूज्य पुरुषों की, वो कृपा हमारे मन में स्मरण में रही आए, यानी विनय हमारे मन में रही आए। ऐसा ना हो कि विनय का भाव गायब हो जाए मन में से, तब तो फिर भक्ति और श्रद्धा हो ही नहीं सकेगी। विनयवान ही भक्ति और श्रद्धा और भगवान से जुड़ सकता है, इसलिए मेरा मन इतना अधिक कठोर ना हो जावे कि मैं फिर भगवान की भक्ति ही ना कर सकूं, ऐसी अति मेरे जीवन में ना हो। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से 30 सेकंड पहले कम से कम आ जाना चाहिए, एक मिनट पहले आ जाए तो ठीक है, 30 सेकंड पहले तो आने ही चाहिए। पहले वो अपनी कुर्सी पर आएंगे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति। ये डिसिप्लिन, ये परस्पर एक विनय का प्रतीक है। देखिएगा, 30 सेकंड पहले आने वाला व्यक्ति 30 सेकंड बाद आया, यानी एक मिनट लेट, सीधा सीधा। तो नेहरू जी एक मिनट उस दिन लेट हो गए। अब अगर वो चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन उन्होंने ही कायम किया है, संसद में प्रधानमंत्री की मुख्यता है, राष्ट्रपति तो सिर्फ बैठते हैं, शोभा है, कार्यवाही तो सभापति प्रधानमंत्री की होती है सारी, नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि लेट आए, ये बिल्कुल सच्ची घटना लिखी है, तो फौरन अपनी सीट पर बैठने से पहले राष्ट्रपति की तरफ चले, उनसे क्षमा मांगने की, मुझे पहले आना चाहिए था, आप सीट पर पहले आ गए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कहते हैं कि वो उनकी सीट तक नहीं पहुंच पाए, इसके पहले ही राजेंद्र प्रसाद खुद उठ करके अपनी सीट से बाहर आके उनके गले मिले। कह रहे इसमें क्या बात है जो आप यहां तक आ रहे हैं, बैठिए, आप भी बैठिएगा, मैं भी कर रहा हूं। ये क्या चीज है, इससे अपन ने क्या महसूस किया, क्या हमारे जीवन में ऐसा ही बना रहता है, हमारा मन इतना ही विनयवान है हमारा मन, तो भैया भक्ति हो पाएगी, और अकड़ने वाले मन से तो भक्ति नहीं हो सकती। ना अकड़े हुए शरीर से झुकना होता है, ना अकड़े हुए मन से भक्ति होती है, और ना कठोर वाणी से भगवान का गुणगान होता है। वाणी में तो हमारे कठोरता अगर आ जाएगी तो हम भगवान का गुणगान ही नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही आज अपन ने समझ लिया कि हम अगर मन वाणी और शरीर सबसे भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, तब फिर हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, हमारे जीवन में कितनी ऊंचाई आ जाएगी। अगर नहीं आई है तो हम करें भगवान के प्रति अपना समर्पण, उनकी भक्ति, उनसे जुड़ें और देखें कि उनसे जुड़ करके हमारे मन वाणी और शरीर कितने पवित्र होते चले जाते हैं, उसी से तो हमारा जीवन पवित्र होगा। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर
के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। वावक शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तको मन करते हो, समकारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन कर कर टूट पड़े खिल जावे अंतर की गलियां, मिथ्या कामना से खुद कुली मुझे जताए बेटू भाभू न सताए बेटू भव्य हो रानी है जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मत सक नमो सदा दे तू
आचार्य द्वारा एक स्वार्थी विजयधर महाराज के पंच से पंपुचे एक स्वार्थी समाधान महाराज पंपुचे एक स्वार्थी भगत महाराज के नाम में अधन्यवाद